ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, विशेष इंदौर रायपुर जोन के सभी ब्रह्मा कुमारी बहने व ब्रह्मा कुमार भाई, जो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जनवरी का जो अंतिम सप्ताह है, सभी जानते हैं कि जनवरी मास ऐसा महीना है जो ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी स्मृतियां दिलाता है, और विशेष रूप से सभी को ये एक मास तपस्या मास के रूप में मनाने का कहो, ऑब्जर्व करने का कहो, सबको ये पहले से सूचित किया हुआ है, और हर दिन के लिए कोई ना कोई या हर सप्ताह के लिए ऐसे कुछ अलौकिक विचार भी राजू भाई ने लिख के भेजे हैं सबको। तो जब हम इंदौर जोन को ख्याल में लेते हैं, बहन जी ने मेरा ये तो बताया मैं कहां कहां देश विदेश में गया, पर उन्होंने कुछ इंदौर से संबंधित कोई बात नहीं सुनाई। और इंदौर में मैं समझता हूं कम से कम भी 3-4 बार गया था मैं, इंदौर रायपुर नहीं गया हूं। और वहां पर हमारे आदरणीय भ्राता ओम प्रकाश जी और उनके साथ में आरती बहन जी, और भी बहुत विशेष आत्माएं सभी से वहां मिलना हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए थे। तो उन सब को अपने मन पटल पर अंकित करता हुआ मैं आपको आज जो मुझे आज्ञा हुई है इसके ऊपर कुछ बोलूं। बड़ी सिंपल सी टॉपिक दी है, फॉलो फादर, लिखा हिंदी में है, शब्द इंग्लिश के हैं। कौन से फादर को फॉलो करेंगे आप? कौन से फादर, कौन से बाप को फॉलो करेंगे? शिव बाबा को? शिव बाबा को नहीं करेंगे। अच्छा, शिव बाबा को याद करेंगे और फॉलो करेंगे ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर चलना काफी, क्या कहूं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं विशफुल थिंकिंग है, बहुत ऐसा उमंग, अगर सभी बाबा के बच्चे बाबा के समान, ब्रह्मा बाप के समान अपनी जीवन को मोल्ड कर लें, श्रेष्ठ बना लें, ऐसा योगी जीवन उनका नेचुरल बन जाए तो स्थापना का कार्य तो हो गया। फिर बाबा ने जिस तरह का अपना एग्जाम्पल हम सब के सामने रखा, अगर हम उसके ऊपर विचार करते हैं, जो हमारी आंखों देखी बातें हैं, कुछ पुरानी जो आद में जब वो मंडली शुरू हुई तब से जो सुनी हुई बातें भी हैं, तो उसमें मुख्य बात क्या क्या आती है वो बाबा ने प्रैक्टिकल लाइफ में हमें करके दिखाई। ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग की जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई के पढ़ते हुए, इसकी धारणा करते हुए सभी जानते हैं, साकार बाबा का एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसी मिसाल हमारे सामने कि उनके जीवन से प्रैक्टिकल अनुभव होता था। क्या थे लौकिक जीवन में, क्या थे, और फिर जब इस यज्ञ की स्थापना की और यज्ञ की बागडोर बहनों और माताओं के हाथ में दे दी और खुद न्यारे हो गए, तो उनकी जो हम वैसे भी कई बार बहनों के प्रवचनों से भी सुनते हैं, ईश्वरी जीवन में कुछ बातें हैं जो बाबा के जीवन से प्रैक्टिकल हम लोगों को देखने को प्रैक्टिकल मिलती थी। त्याग क्या होता है, तपस्या क्या होती है, सेवा क्या होती है, ये सब बातें बाबा के प्रैक्टिकल लाइफ से अनुभव होती थी। आप सब जानते हैं साकार बाबा ने जब वो अपने बिजनेस में थे, डायमंड मर्चेंट, हीरे ज्वारात का बिजनेस था, उस समय उनका संबंध राजाओं महाराजाओं के साथ, भारत में भी और नेपाल में भी, और फिर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जब इंडिया में आई थी, भारत में आई थी, तो उसके लिए बाबा ने एक डायमंड नेकलेस बना करके दिया था। उनको देने से पहले बाबा ने दादी निर्मल शांता को, उस समय तो दादी नहीं कहते थे उनको, छोटी थी, उनको पहना करके अपने जो उनके उस समय जान पहचान के लोग थे उन सब को दिखाया, एक ऐसा नशा था उस समय कि बाबा ने जो नेकलेस बनाया है वो किसके लिए बनाया है। उस समय भारत ब्रिटिश राज का, यहां पर उनका बोलबाला था और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट आई थी, तब की ये बात है। तो हीरे जवाहरात सब कुछ वो सब होते हुए भी आप सब जानते हैं कि साकार बाबा को जो उनकी अपनी रुचि की बात थी वो कुछ गुप्त रहती थी, और वो थी एक बड़ी खोज बाबा को थी। बाबा इसी खोज में भिन्न भिन्न शब्दों से उनको कहेंगे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी, गॉड रियलाइजेशन के लिए भी। ये बाबा का विशेष इंटरेस्ट था। और जानते हैं आप सभी के बाबा ने अपने मुखारविंद से हम सबको बताया हुआ है कि कारोबार में जाने से पहले श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करते थे, श्री लक्ष्मी का पूजन जरूर करते थे। चाहे कहीं जा भी रहे हों, ट्रेन में भी उसका वो अपना नियम निभाते थे। और फिर वो जो डायमंड नेकलेस दादी को पहना करके सबको दिखाया, बहुत सोच सकते आप। और वो क्वीन को प्रेजेंट किया वो नेकलेस, डायमंड नेकलेस, अभी भी लंदन के, लंदन में एक विशेष स्थान है जहां पर डायमंड्स रखे हुए हैं और वो पब्लिक को दिखाए जाते हैं। टावर ऑफ लंदन बोलते हैं उसको, वहां जाके देख सकते हैं। हम देख करके आए हैं, वो नेकलेस भी देखा। हमारे बहने भाई जो वहां साथ जाते हैं दिखाने के लिए, वो खास दिखाते हैं ये बाबा का बनाया हुआ नेकलेस है। तो आप सोचिए, वो सब होते हुए भी उनकी अपनी जो आंतरिक भावनाएं थी, आंतरिक खोज थी, वो कुछ और थी। ये बाहर का जो राजाई का एक शो होता है, वो सब करने का उनका नहीं था। लेकिन भगवान प्राप्ति कैसे हो, तो उसका जब अनुभव हुआ, आप लोगों ने कल और आज की मुरली में पढ़ा होगा, सुना होगा। बाबा ने अपने अनुभव सुनाए हैं बीच बीच में कि जब बाबा को साक्षात्कार हुए और उन साक्षात्कारों में पुरानी दुनिया का परिवर्तन, नई दुनिया कैसी आएगी और उसमें क्या पार्ट होगा। शुरू शुरू में बाबा को कई बहने भाई, जब ओम मंडली शुरू हुई थी तो बाबा को श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। और वो लक्ष्य मिल गया, क्योंकि ईश्वरी ज्ञान का लक्ष्य है नर से श्री नारायण बनना, और श्री नारायण का बचपन है श्री कृष्ण। तो बाबा ने उस लक्ष्य को अच्छी तरह से जानकर समझकर फिर उसके लिए करना क्या है, और वो क्या करना था, वो तपस्या करनी थी। बहुत तपस्या की बाबा ने, शुरुआत भी उसी से की। ओम मंडली की स्थापना से पहले अकेले बनारस में जाकर के तपस्या की, और उसके बाद भी आप सब जानते हैं आज दिन तक हम उसी प्रथा को लेके चल रहे हैं कि सवेरे सवेरे ईश्वरी याद का विशेष अभ्यास, और उसके बाद श्री भगवानोवाच, भगवान के जो महावाक्य हैं जिसको हम आज मुरली कहते हैं, ज्ञान की मुरली, तो वो अवश्य सवेरे सुनने के सुनाने के दोनों थे। बाबा अपने लिए हमेशा कहते थे मैं नंबर वन स्टूडेंट हूं। शिव बाबा इस मुख द्वारा जब ज्ञान सुनाते हैं तो सबसे पहले मेरे कान नजदीक हैं, सबसे पहले मैं सुनता हूं। और सुनने के साथ साथ बाबा फिर उस पर विचार सागर मंथन करके उसकी गहराइयों में जाना और उसके लाभ क्या हैं, अगर उसकी एप्लीकेशन नहीं है तो नुकसान क्या है, बहुत उसके ऊपर विचार सागर मंथन बाबा का चलता रहा। और उस विचार सागर मंथन को बाबा ने हम बच्चों के साथ शेयर किया, बताया हुआ है टाइम टू टाइम। और उसमें बाबा को ये स्पष्ट था, बहुत क्लियर था कि मेरा जो पार्ट है वो सब बच्चों के लिए एग्जाम्पल बन करके रहने का है। ये जो कहते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, इस बात के लिए बाबा को बहुत ध्यान रहता था, साकार बाबा को। इसलिए आप देखते हैं पूरी हिस्ट्री को, चाहे बाबा कहीं पर भी हो, माउंट आबू में हो, बॉम्बे में हो, या दिल्ली गए हो, किधर भी, दिनचर्या उनकी वही रहती थी। अमृत वेले जरूर उनको उठ करके अपनी तपस्या भी करनी और विचार सागर मंथन भी करना, और बच्चों को ज्ञान के क्या कहें खजाने लौटाना, ज्ञान की गहराइयों में ले जाना, ज्ञान के अनमोल रतन बच्चों को रोज मिलने चाहिए। कभी भी मुरली मिस ना हो, ये आप देखते हैं। तो ये बाबा ने हम बच्चों को अपना एग्जाम्पल सेट करके बताया, और उसका कारण क्या, उसका कारण बाबा ने बहुत स्पष्ट मुरलियों के अंदर बता तो दिया है, हम लोग भी उसको कभी कभी ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, कभी और विचार आ जाते हैं, उस समय शायद मिस भी करते हों। कि पहली बात है कि जो ईश्वरी ज्ञान शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया है, भले ही उसके संबंध से कुछ बातें भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी हैं, श्रीमद् भगवद गीता जो प्रचलित गीता जिसको कहें उसमें भी है थोड़ा बहुत, लेकिन आप सोचिए इतने वर्षों से कितने वर्ष हो गए? 86। 86 वर्षों से जो ज्ञान बाबा देते रहे, कितना खजाना इकट्ठा हो सकता? और बाबा को खुद को, बाबा ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा का दिया हुआ जो बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, तो नया ज्ञान जो बाबा ने दिया, जैसे बाबा को हीरे जवाहरात की परख, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू क्या थी वो जानकारी थी, इसी तरह से ज्ञान रत्नों की भी वैल्यू क्या है वो साकार बाबा ने इतना उसको एप्रिशिएट किया। आप में से अगर कोई साकार के दिनों के भाई बहने हों, जरा हाथ खड़ा करो। साकार के दिनों के एक भी नहीं है, सब अव्यक्त के ही बालक हैं सब। तो साकार बाबा को मुरली के साथ इतना प्यार होता था, जैसे मुरली पूरी करके अपने रूम में आएंगे, अपने हाथ से लाल पेंसिल से फटाफट जो सर्विसेबल बाबा के खास बच्चे, बड़ी दादियां, बड़े भाई जगदीश भाई सहित, फटाफट उनको पत्र लिख करके भेजेंगे। हम दादी प्रकाश मणि जी के साथ बॉम्बे में थे तो हर रोज बाबा की पोस्ट आती थी। एक रविवार का दिन होता था जब नहीं आती थी, क्योंकि छुट्टी का दिन होता था, लेकिन रोज बाबा के पत्र आना और उधर से दादी जी का पत्र, समाचार पत्र जाना बाबा को। और पत्रों में क्या होता था, बाबा खुद बच्चों को वो ज्ञान के ज्ञान रतन जो उस दिन मुरली में नए नए कोई आए होंगे, चाहे वो विचार सागर मंथन के कारण आए, चाहे शिव बाबा ने डायरेक्ट आकर के कुछ नई बातें सुनाई, वो बाबा लिख करके फटाफट। आप कितने पत्र लिख सकते हैं एक दिन में? मुश्किल से एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, और बाबा कम से कम भी 12, 15, 18 स्थानों पर ऐसे फास्ट लिख लिख करके भेजते। और हम लोग इंतजार करते थे बाबा के लाल अक्षरों का लिखा हुआ पत्र आए, और वो सब मिलकर के बैठ के आपस में दादी सुनाएंगी, हम सुनते थे, इतना मजा आता था उसका। लेकिन उसके अंदर होता क्या था, बाबा को जिस जिस ज्ञान की कोई ऐसी बात खुद को बहुत जची हो वो विशेष लिखेंगे। और बाबा साफ लिखते थे, बच्चे ये ज्ञान खजाना आपको भेज रहा हूं, एक एक ज्ञान रतन की कीमत लाखों रुपए है। मुरली के अंदर भी 20-25 ऐसे ज्ञान रतन होते हैं, लेकिन फिर स्पेशली उसमें से सिलेक्ट करके जैसे बाबा भेजते। तो बाबा को सबसे बड़ी बात तो यही कि भक्ति मार्ग में जो चीज हम ढूंढते रहे वो हमें स्वयं शिव बाबा ने अवतरित होकर के दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा और फिर ईश्वरी महावाक्य मुरली के द्वारा इतना स्पष्ट सारा ज्ञान सुनाया और लक्ष्य दिया। क्या लक्ष्य दिया आप सब जानते हैं, इस ही जीवन में, भक्ति मार्ग वाली बातें नहीं कि भई वहां चलो एक जन्म में भगवान नहीं मिलेंगे, दूसरे में मिल जाएंगे, दूसरे में नहीं तीसरे में मिल जाएंगे, सिर्फ उसके लिए आशा रख करके चलते रहे। लेकिन बाबा ने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया कि कल्प के लास्ट में, सत्ययुग से लेकर कलयुग अंत तक 5000 साल का जो ये एक कल्प माना जाता है, तो कल्पांत में सत्ययुग के आद और कलयुग के अंत के बीच का जो समय है, इस समय स्वयं परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर के ये ईश्वरी ज्ञान देते हैं और दिव्य दृष्टि का वरदान देते हैं, दिव्य चक्षु का वरदान देते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या था और हमारे परम पिता उनका स्वरूप क्या, उनके गुण क्या, उनके कर्तव्य क्या। भावनावश हम मानते आए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे अभी हमें निश्चय है, अभी उनके साथ संबंध जोड़ा है और अभी उसको अपने उनके शिक्षाओं को कहो, उनकी श्रीमत को प्रैक्टिकल लाइफ में ला रहे हैं, उस चीज को आप देखेंगे दुनिया में और कहीं नहीं होता है। और ब्रह्मा बाबा ने खास इस बात को पक्का किया हुआ था कि ब्रह्मा बाप जैसे किसी ट्रेन का इंजन होता है तो आगे होता है, इसी तरह से बाबा खुद जो भी ज्ञान की बात बाबा से सुनते हैं, पहले उसको अपने जीवन में ला करके फिर बच्चों को अनुभव के आधार से और गाइड करेंगे। और आप देखेंगे अभ्यास करते 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 बाबा का, हम अपनी आंखों से जो देखी हुई बात है कि बाबा के स्वरूप में कैसे कैसे चेंज आनी शुरू हुई। आद में जो साक्षात्कार रूप में बाबा को देखते थे, वैसी बात फिर थोड़ा बंद हो गई और उसके बाद ज्ञान की तरफ पूरा ही सबका ध्यान गया और दिव्य दृष्टि का वरदान एक को नहीं कईयों को मिलता गया। हर जोन के अंदर संदेशी हैं, आज भी हैं, और वो संदेश बाबा को जाके देना, बाबा से ले आना, सूक्ष्म वतन की बातें, वो भी सब बाबा ने प्रैक्टिकल में देखी भी और उसमें फिर उसको रिफाइन भी करते गए। उनके सामने संदेशी को बिठा करके भोग के टाइम पर संदेशी जाएगी ऊपर बाबा के पास वतन में, और बाबा इधर मुरली चला रहे होंगे तो क्या कहेंगे, बाबा जो आप बच्चों को ज्ञान रतन दे रहे हैं तो ये तो सुन नहीं रही है, इसको तो बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि हर कोई समझता है संदेशी का पार्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बाबा की अपनी बात थी उस समय, वो इसलिए कि हम थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि संदेशी बाबा के दिए हुए वरदान के अनुसार अपना पार्ट बजा रही है, और फिर चलते चलते अगर जो भी निमित्त ऐसे कोई संदेशी किसी कारण से, उनकी तबीयत के कारण, उनके और कोई कारण से, वो पार्ट में कभी उनका पार्ट बंद भी हो सकता, लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शिव बाबा का अवतरण, शिव बाबा की मुरली, वो आप देखेंगे साकार बाबा का जो अंतिम दिन साकार में जो था, तब तक बाबा की मुरली चलती रही। उसमें एक विशेष आप लोगों ने पता नहीं वो नोट किया या नहीं किया, 30 जून 1968 रात्रि क्लास, उस मुरली के अंदर बाबा ने अपना अनुभव सुनाया हुआ। आपको पढ़ करके आश्चर्य होगा, शायद पढ़ी हो सुनी हो। बाबा ने खास उसमें इशारे में थोड़ा सा एक दो लाइनों में ही स्पष्ट किया था कि अभी ब्रह्मा बाबा को जिस स्थिति तक पहुंचना था, बाप समान स्थिति तक, बाबा उनके समानता में आ गया है। दोनों मिलके एक हो गए। पता नहीं आपने कभी पढ़ा या नोट किया, और इसके बाद और ज्ञान की जरूरत नहीं है, बाबा ने खुद के लिए बोला। खैर उसके बाद तो आप जानते हो, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 7 मास, उसके बाद भी एक प्रकार से कहें कि बाबा अपनी उस स्थिति तक पहुंच करके, बाप समान स्थिति तक पहुंच करके, शरीर में रह करके, लेकिन फरिश्तों की तरह उन्होंने अपना पार्ट बजाया। उनके संपर्क में आने वाले, उनके पास जो आके मिलने वाले, वो जानते हैं कि जैसे बाबा पहले एक एक स्थान का सारा समाचार सुनते थे, एक एक बच्चे की कहानी कोई सुनते थे, सब था, लास्ट के जो 2-2.5 साल थे उसमें बहुत चेंज आ गई। कुछ भी उनको सुनाने के लिए हम बाबा के रूम में या बाबा के झोपड़ी में ऊपर बैठते थे या जहां पर भी होंगे, तो बाबा अपनी अंदर की जो स्थिति है तपस्या की, उसमें बहुत गहन तपस्या में रहते। पहले तो हमें बोलने के लिए सोचना पड़ता कि बोले या ना बोले। उस समय का जो बाबा के पास बैठ करके परकंपन फील होते थे, इतने शक्तिशाली होते थे, और बाबा थोड़ा ऐसे देख करके दृष्टि देंगे, उड़ा देंगे, हमें भी उड़ा देंगे, तो बाबा पूछेगा, हां बच्चे बोलो। कभी कभी तो वो क्या बोलना था वो भूल ही जाते थे, बाबा को कहना पड़ता था, बाबा अभी तो याद नहीं रहा, जब याद आएगा तो बता देंगे। और बाबा भी अगर कोई बात हम लेकर के आए हैं तो लंबी लंबी कहानी नहीं सुनते थे। फिर दो चार लाइन सुनी फिर कहेंगे हां बच्चे बाबा समझ गया। बाबा ये अभी तो मैंने शुरू किया। हां बच्चे बाबा समझ गया। बाबा को अपने समय की और हम बच्चों के समय की इतनी वैल्यू थी कि अभी जो हो गया या जो बातें हैं इसमें टाइम क्यों गंवाना है। बाबा के साथ मन लगाएंगे। तब बाबा के वो लास्ट के जो शब्द हैं कभी आपने नोट किए होंगे, उस स्थिति तक पहुंचने की बात थी। निराकारी निर्विकारी निरंकारी, ये लास्ट की मुरलियों में आप पढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति तक पहुंचना, उसको थोड़ा आप सोच सकते हैं कि हम कहां तक पहुंचे हैं। बड़ी मेहनत का काम है ये, कहने में बोलने में लिखने में आता है सहज ज्ञान सहज राजयोग। सहज है नेचुरल है, लेकिन जब इसकी गहराई में जाने की बात है तो बाबा का मिसाल सामने आता है कि ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह से अपना अभ्यास किया, और क्या अभ्यास किया कि मेरा मन सिवाय शिव बाबा के और किस तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति बाबा की कि दोनों जैसे, और उसकी प्रैक्टिकल हम बाबा के चेहरे से महसूस होता था। जो पहले शुरू शुरू में जब बाबा हम बच्चों से मिलते थे तो लगता था अभी से बाबा इनके तन में आए हैं। वो नैनों में चेंज आती थी, होंठों पर मुस्कान आ जाती थी, वाइब्रेशन दूसरे हो जाते थे। लेकिन लास्ट के 2.5 साल ऐसी स्थिति थी कि एक रस जैसे बाबा एकदम बाप समान स्थिति के अनुभव में थे। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए बाबा ने बहुत स्पष्ट किया हुआ उन दिनों की बातें हैं कि बच्चे जब आप 8 घंटे योग करो, कर सकेंगे लगातार नहीं, सारा दिन कोई बैठ के करना नहीं है, पर बाबा ने जिस तरह से कहा 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे अपनी कारोबार करो, सेवा करो, सब करो, लेकिन 8 घंटे जो हैं याद की यात्रा के लिए, जब विशेष रूप से उसको आप करेंगे तो बाप समान की स्थिति तक पहुंचेंगे। अब मैं समझता हूं अभी तक हम खुद ही अपने आप को देखते हैं 4 घंटे से आगे नहीं जा रहे, क्योंकि पूरा अटेंशन देना उसमें और बातों से बुद्धि को हटाना। तो बाबा की जो विशेष श्रीमत लास्ट के दिनों की उनकी, कि बाप समान बनना है तो 8 घंटा योग, योग का मतलब तपस्या, उसके कोई भी आप बाबा के अव्यक्त बाबा की मुरलियों के अनुसार भिन्न भिन्न स्थिति में रख सकते अपने मन को, लेकिन शिव बाबा के साथ मन लगा हुआ हो वो तब हो सकता है जब इतना। हाँ वो मिसाल देते हैं, मीरा का मिसाल है और दूसरे भी कई भक्तों का मिसाल है, जिसको ये इस बात की वैल्यू होगी कि मेरा एक एक सेकंड जो है, एक एक पल जो है, वो व्यर्थ ना जाए। और व्यर्थ तभी जाता है जब बाबा के साथ मन नहीं लगता है। इसलिए बाबा ने बार बार मुरली के अंदर हम बच्चों को इशारे दिए हैं, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर फिर मुझ बाप के साथ मन लगाओ। आप प्रैक्टिकल देखते हो, साक्षी होकर के आप देखो 24 घंटे में कितना टाइम हम ऐसे रहते हैं। जो 8 घंटा रहते हो जरा हाथ खड़ा करो, 6 घंटे रहते हो हाथ खड़ा करो, 4 घंटे रहते हैं जो हाथ खड़ा करो, थोड़े से हैं। तो इसको आगे बढ़ाना है। अगर हमें बाप समान स्थिति को प्राप्त करना है, फॉलो फादर करना है, तो बाबा की तरह लक्ष्य रखना है कि हमें धीरे 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 कॉन्शियसली। आप कहें कि अब मेरी तो स्थिति अब ऐसी बन गई, नेचुरल बन गई, कई ऐसे बोलते हैं, मेरी तो नेचुरल स्थिति ऐसे, फिर आराम से जरा बैठ करके हो थोड़ा एनालाइज करो, पूछो कोई और संकल्प आते हैं, किसी और जगह मन जाता है, बाल बच्चे याद आते हैं, किसी और भाई बहनों को याद करते हो, फिर कहेंगे ये तो स्वाभाविक है ना, परिवार के साथ रहेंगे तो याद तो आएंगे। लेकिन बाबा की मिसाल है हमारे सामने साकार की, कि सब बच्चों को संभालते हुए कितनी जिम्मेदारी बाबा के ऊपर थी, सभी सेंटर्स का ध्यान रखते हुए, सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए, फिर भी एक लक्ष्य कि मुझे 8 घंटा तपस्या करनी है। और प्रैक्टिकल में देखा कि जब बाबा ने कुछ वर्ष लगातार वो तपस्या की तो फाइनल स्टेज तक पहुंच गए। बाप समान प्रैक्टिकल, ऐसा लगा बाबा को बस शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा मर्ज हो गए हैं, जैसे उसमें समा गए हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाबा ने साकार में अपने जो लास्ट के दिन थे उस समय प्रैक्टिकल में किया। और उसका आधार जो प्रैक्टिकल देखा, साइलेंस, शब्द नहीं, बातें नहीं, गीत नहीं। वो गीत भी बंद करा दिए थे बाबा ने, जो ग्रामोफोन के गीत बजते थे लास्ट में, तो वो भी बंद। अब इतना मन में खुशी भी रहे, अतीन्द्रिय सुख भी रहे, और इतनी शक्तिशाली हमारी स्थिति रहे, इतने ऊंचाई में हमारा मन रहे, उसका अभ्यास करेंगे तो बाप समान स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। और करना है ये, एक अपने मन में पक्का दृढ़ संकल्प चाहिए कि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। इसको तभी कहेंगे कि हमने फॉलो फादर किया। ओम शांति। ओ।